ہم اگر اس چیز کو اوور آل دیکھ لیں کہ بچے کی اخلاقی تربیت میں ہمیں اپنے آپ کو کس طرح پیش کرنا ہے اور بچے کے رسپانسز کو کیسے سمجھنا ہے. بعض دفعہ کچھ اور قسم کے مسائل ہوتے ہیں اس عمر میں کہ بچے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ گھر کے باہر وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں 12 سال کی عمر میں, پیوبرٹی, لڑکی بالغ ہو گئی, اس کے ظاہری آثار دکھنے شروع ہو گئے ہیں, لڑکے کے رویے میں چینج آتی ہے. اب لڑکے کب پیوبرٹی کی ایج پہ آتے ہیں؟ عمر اللہ نے نہیں بتائی کہ 14 سال کا پہلا دن ہے تو اس دن آئیں گے. یہ وقت, ماحول اور حالات کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. جتنا انرچ فوڈ ہوگا, جتنا اچھا ماحول ہے, فریش چیزیں ہیں, انرجیٹک ہیں, پروٹین ایڈڈ اور وائٹامن ایڈڈ, اتنے ہی بچے جلدی بڑے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کہ جب آپ کی عمروں میں کوئی 8-9 سال کی جس بچیاں دکھنے میں لگتی تھیں, آج کی بچیاں اس سے بڑی دکھتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پیوبرٹی کی ایج بھی دن بدن جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے. ایک معروف کہاوت ہی تھی ہمارے یہاں 12 سال کی عمر ایسے ہی تھا نا. اور اب میرا خیال ہے کہ موسٹلی یہ ریشو جو ہے یہ 10 سال کے اراؤنڈ جا چکے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب 7-8 سال کی بچی بھی نانی بن جائے گی. کیسے بنے گی, کیا ہوگا, آئیے ذرا پیوبرٹی کے طور پہ کرتے ہیں. اب ہمارا اگلا ٹاپک چل رہا ہے جسمانی تربیت کا. ابھی تک ہم نے کتنے ٹاپک کور کیے؟ ایمانی تربیت, جس میں بچے کا ایمان, اللہ سے تعلق, رسول سے تعلق, اس کی موت, جنت, سب کچھ, ساری باتیں جو بھی ہم نے مختصراً کی بات وہ ہو گئی. دوسری ہم نے دیکھی اخلاقی تربیت, جس میں بچوں کے اندر پیدا ہونے والی 4 بری برائیوں کا ہم نے تذکرہ کیا, جھوٹ کی, چوری کی, گالی گلوچ کی اور بے راہ روی کی. اب ہم کر رہے ہیں بچے کی جسمانی تربیت. یہ بہت اہم ہے کہ بچے کو جسمانی طور پہ ہم کس طرح سے اس کو کریں. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ مختلف چیزوں کو نوٹ کر لیں. جسمانی تربیت میں وہ چیز آ جائے گی جس کا تذکرہ پیچھے اشارتاً غصے والے باپ میں ہو گیا, کہ بچوں کے فوڈ کو کنٹرول کیجئے, کھانے پینے کے وقت مقرر کیجئے, اور کیا دینا ہے, کتنا دینا ہے. دیکھیے اگر ایک وقت میں گرم چیز دی ہے تو دوسرے میں ٹھنڈی دیجئے. ایک وقت کا میل ہیوی میل ہے تو دوسرے وقت کا لائٹ ہو. بس ایک ویک میں اگر آپ نے, لیٹس سی, اگر ہمارے پاکستانی کھانے بھی کافی ہیوی ہوتے ہیں نا, پلاؤ دیا ہے مثال ہے, بچے کو پلاؤ آلو گوشت دے دیا ہے, تو اب رات کے میل میں آپ اس کو کچھ سبزیوں کی چیز دے دیں, خالی اس کو سیلڈ کاٹ دیں, اس میں کارن ڈال دیں, اس کو ساتھ وہ جو ٹوسٹڈ بریڈ سی ہوتی ہیں سوکھی وہ دے دیں. اس طرح سے سوئچنگ کریں. پھر دوسری چیز اس میں نوٹ کیجئے گا کہ سونے اور جاگنے کے ٹائم ان کے نوٹ کیجئے. یہ بہت اہم ہوتا ہے. ہیلدی باڈی جو ہوتی ہے ہیلدی مائنڈ کا معاملہ ہوتا ہے. بچوں کو سونے کے معاملے میں بہت زیادہ آپ اس طرح سے یوز ٹو کر دیں کہ گھڑی دیکھ کے سونے کی بجائے ان کو دیکھ کے گھڑی یاد آ جائے. کبھی کبھی ریلیکس کر دیں, ویکینڈ کی شام ہے نہ کچھ نہیں, ٹھیک ہے آپ تھوڑا اچھا جاگ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. کہیں بچہ جاتا ہے, نانی کے گھر جاؤں, میں چلی جاؤں, چلا جاؤں, کیا ہے, صرف دیکھیں نانی یا دادی کے گھر بھیجا کریں, اوروں کے گھر نہ بھیجیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے, لیکن بہت ساری خرابیاں کزنس کے ان اٹینڈڈ ایک ساتھ رہنے سے ہوتی ہیں. ہمارے ملکوں میں جہاں شروع, یعنی ہمارے وقتوں میں کہہ لیجئے, اس عمر میں ہوتا کیا تھا کہ جب ینگ بچی 12-13 سال کی آپ کی ینگ بچی ہے, وہ چلی گئی اپنے کسی انکل کے گھر رہنے. اب انکل کا 14-15 سال کا لڑکا ہے. اب یہ عمر ایسی ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ کوئی میری طرف انٹرسٹیڈ ہے. کوئی ہنس کے دیکھ لے تو ہمیں وہ دنیا کا سب سے بڑا محسن لگتا ہے. کوئی تعریف کر دے تو لگتا ہے اس سے سچا دنیا میں انسان ہی کوئی نہیں ہے. اس عمر میں جو باڈی میں چینجز آتی ہیں نا, خاص طور پہ لڑکیوں کی, ان کے اندر تعریف حاصل کرنے کا مادہ ہوتا ہے. یہ آپ لکھیں, ان کی باڈی کی ڈیمانڈ ہے. 12-14 سال کی عمر میں بچیوں کو تعریف چاہیے ہوتی ہے, ان کو کوئی افیکشن, یعنی ان کو کوئی ان کے ظاہر کی تعریف کرے. کیوریس ہو جاتی ہے نا, کبھی چہرے پہ کچھ مل رہی ہیں, کبھی ہاتھوں پہ مل رہی ہیں, کبھی کوئی لوشن آ رہے ہیں, کوئی ہو رہا ہے. اصل میں اس عمر میں وہ ارج پیدا ہو گئی ہے, کوئی مجھے پسند کرے, کوئی چاہے. یہ میں باہر کے افیکٹ کی بات نہیں کر رہی, ابھی صرف نیچرل باتیں ہیں. اور جب باہر بھی جلتی پہ تیل ڈلنے کا کام ہو تو یہ دیکھیے کیفیت کتنی جلدی پیدا ہوگی. اسی طرح جو 14-13-14 سال کے لڑکے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر اس عمر میں پلینگ, فلرٹنگ, انجوائے, ٹیسٹ, جس کو اب یہ کہہ لیجئے کہ تجسس, کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اپوزٹ سیکس کے بارے میں سوچنا, بات کرنا, دیکھنا, یہ سب آ جاتا ہے. یہ نیچرل ہے, یہ آئے گا. یہ نہ آئے تو اب نارمل ہے, پھر تو وہ بالغ ہی نہیں ہوں گے. बिल्कुल ऐसे जैसे पीरियड्स ज़ाहरी तौर पे हमें दिखते हैं ना बच्चियों की बलूगत, अंदर उनके ये कुछ हो रहा होता है, देखने में आपको वो जैसी भी लगे। अब आप ऐसे वक्त में क्या करें? दो तीन चीज़ें। बच्चों के अंदर ये जो जज्बात उभर रहे हैं ना, इसका इजहार किस तरीके से करें? नंबर एक तो फूड कंट्रोल उनका, दूसरी बात है उनकी लुक्स को कंट्रोल कराएं। अगर घर में वीडियोस चलती हैं, टीवी चलता है, दिस एंड दैट, जो हमने पीछे अखलाकी चीज़ों पे बात की, जहाँ आम गंदे सीन है, आप क्या समझते हैं आप बड़ी हैं, आप मैरिड हैं, शादीशुदा खातून हैं, आपकी नज़रों में ऐसा कोई सीन आता है तो आप उसको देख के एक लम्हे के लिए कम अज़ कम 10 सेकेंड के लिए सोच में मजबूर होती हैं, तो एक मासूम लड़की लड़का जिसने ना ये चखा ना देखा ना उसको पता, क्या उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती? उसकी वेस नहीं डिस्टर्ब होती? मैं इस उम्र का तसव्वुर अपने जहन में किस तरह से लाती हूँ, ECG। कभी आपने देखी एक डॉक्टर्स के पास जाके जब हार्ट की बीट चेक करते हैं तो यूँ ऊपर नीचे जाती है ना, मुझे लगता है इस उम्र में ये फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं। और जब माहौल ही घरों में ऐसा, फिल्में ऐसी, गाने ऐसे, टप्पे ऐसे, और फिर ऊपर खैर से आप चले गए किसी कज़न के घर रहने, उस कज़न ने कुछ ना कहा ना, सिर्फ उसने आपको देख के एक हल्का सा स्माइल दे दिया ना, तो रात को उस दिन उसने ये सोच के सोना है कि वो फलां फिल्म में भी हीरो ने हीरोइन को देखा था तो ऐसा लगा था। और बाद में क्या होगा, वो एक अंदर ज़रा सा एक दर्द हम लेकर वो बच्ची घर आएगी और फिर ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही सोचने को दिल चाहता है। और इस उम्र में ना चाहते हुए भी ये लगता है कि बस जिसने मेरी तारीफ कर दी है वो सबसे अच्छा। मैं एक ऐसी माँ को जानती हूँ, अपनी बच्ची को लेकर आई, बहुत पहले की बात है, यहाँ की बात नहीं है वैसे भी, तो कहने लगी इसको समझाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? ये कहती मैंने फलां से शादी करनी है। तो मैंने कहा ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो अब शायद हर एक ही कहता है। नहीं देखो करनी किससे है, किस्सा मुख्तसिर, जो कहानी खुली वो क्या थी, ब्लैक लड़का यानी अफ्रीकी जैसे लड़का है, नॉन मुस्लिम अफ्रीकी, चेहरे का जिस्म का भद्दा, कहती है मैंने उससे शादी करनी है। खैर बात हुई, कहती इससे समझाएं बात। मैं उस बच्ची के पास बैठी, मैंने उससे कहा बेटा क्या बात है, आपको क्या उसमें अट्रैक्शन क्या दिखती है? क्या वो अमीर है, दौलत? कहती कुछ नहीं है, वो तो अभी जॉब भी नहीं करता, पढ़ता है उससे कुछ थोड़ा सा बड़ा। मैंने कहा क्या कहता है? कहने लगी ही केयर्स मी, ये मेरी केयर करता है, मेरे घर वाले केयर नहीं करते। मैं कहा अच्छा सुनाओ क्या, कोई बात सुनाओ। कहती वो फलां वक्त पे मुझे बुखार था ना, तो फिर इसने मेरा ख्याल रखा, फिर ये अपनी अम्मी से मेरे लिए कुछ सूप बनवा के लाया। अब अम्मी से जब सूप बना तो अम्मी को शुक्रिया कहते हुए इसने उसकी अम्मी का शुक्रिया अदा किया, होते हुए कहती कि मैं उसके घर जाने लग गई, उसकी अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो मेरे घर वाले मेरे पे शक करते हैं जबकि वो मुझे प्यार देते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे उससे अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता। यकीन करें जिसको आप कहें कि ना अकल ना शक्ल, इस तरह से इस उम्र में ये ख्याल आने लग जाते हैं कि सिर्फ ये ख्याल कि ये मेरा ख्याल रखता है। मैंने कहा आपने सोचा कभी ये बच्चा ये लड़का कल आपका शौहर बनेगा, आपके बच्चों का बाप बनेगा ना? आप सोचें, आप इसको एक लम्हे पे कर लें, आपकी केयर तो बहुत कर रहा है, आप थोड़ा सा आगे सोच के चलें, 2-4 साल बाद जब ये आपके बच्चे का बाप होगा तो कैसा बाप होगा? अब इनका उसके पास जवाब नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बात जो हो सकी अल्लाह ने करवाई, उससे मेरी बात हुई, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है। इसके लिए हमें इस उम्र में बच्चों की तरबियत के अंदर जहनी तौर पे उनको बड़ा रखें। कैसे? पहले दौर की बातें थी या सीरत की बातें कह लें, सुन्नत की बातें कर लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को प्रमोट किया कि जब भी एक बच्ची जवान हो जाती है और लड़का स्पेशली उसके अंदर इस तरह के जज्बात आते हैं तो फिर बेहतर है कि उनकी शादी की जाए। लेकिन मैं मानती हूँ कि आज के दौर की 11-12 साल की लड़की शादी के काबिल नहीं होगी, वो सेक्स के काबिल शायद हो गई होगी, शादी के काबिल नहीं हुई, क्योंकि हमने तो उसको भी गुड़िया और पप्पो और बिल्लो कह के पाला हुआ है, लाड ही नहीं खत्म, अभी भी उसको पजामा पहनाते कहते हैं ये बेबी है, ये फ्रॉक्स पहनती है, स्लीवलेस पहनती है, आधी टांगे नंगे, ये तो भी बेबी है, ये बस अभी सिर्फ 14 साल की तो हुई है, वैसे बड़ी लगती है, ये आपने इसको क्या पहनाया हुआ है? ये बात जब मैं कहने लगी ना, इसको गौर से सुनिएगा, आप भी माएँ हैं और जहाँ तक आपको ये बात फ़ायदा देती है, इस उम्र में जिनसी जज्बात को उभारने में बच्चियों की खास तौर पे और लड़कों की ड्रेसिंग, वो क्या पहनते हैं, ये बहुत किरदार अदा करती है। मैं इसको आपको आपके ऊपर अपने ऊपर लेके सोचती हूँ। हम अपने घर में सुबह थे, किचन का काम कर रहे थे, पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, जो भी यानी घर में जो आम पहनते हैं हम सभी, मतलब कोई नहीं है, उस वक्त के हमारे इमोशंस जो हमारे ढीले ढाले घर के कपड़ों के दौरान होते हैं, और वो वक्त जब हम कोई बहुत अच्छा सूट, फैंसी, सॉफ्ट, खूबसूरत, डेकोरेटेड सा पहनते हैं, क्या हमारी मियाँ के साथ भी बातचीत में जुमले फ़र्क होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या हमारे कपड़े हमारे शौहर और बीवी के मिजाज पे असरअंदाज होते हैं? होते हैं ना, सबको पता होते हैं। ठीक है, अब आप पहनते हैं पहनना अच्छा जोड़ा, सजा संवरा सब कुछ, क्योंकि आप किसको दिखाएंगे, आपके मियाँ मौजूद हैं, आपके दिल में कोई जज्बात उभरे आप अपने मियाँ से अपने जज्बात का इजहार करें, उनको खुश करें। पीछे जाइए 20 साल, 25 या 20 से भी कम, मैं आप सबको दावत दूंगी, आप मुझे यहीं स्पॉन्टेनियसली कट डाउन करें कि आप गलत कह रही हैं। लेकिन कंवारी बच्चियों को फैंसी कपड़े, घाघे, चोलियाँ, गरारे, लहंगे, साड़ियाँ, काम वाले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती थी। मेकअप की इजाज़त होती थी कुंवारी बच्चियों को? क्या वजह थी? जो पहनेंगे वो जज्बे दिलों में आएंगे। ये लिखें, हमारे पास आज अल्लाह ने बहुत दे दिया है, पैसे बहुत हैं, हम उस खुशी में कर रहे हैं, अपनी बच्चियों को शादी से पहले लहंगे शहंगे बना के देते हैं, कोई हर्ज नहीं था, अगर इसका असर हमारी बच्ची के जज्बात पे ना आए। अब एक बच्ची किसी कज़न की शादी पे तैयार होती है, चले कज़न का जोड़ा 10,000 क्रोन का है तो उसका 2,000 का तो हो गई, वो पार्लर गई उसने, तब पार्लर पे जाके, चले मिसाल है मैं अपने तुक्के लगा रही हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन उसने 2,000 क्रोन दिए, इसे कहा नहीं 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 मैंने भी बाल बनवाने हैं अम्मी ये वो, अच्छा अम्मी कहते जब बना लेना, मैंने पार्टी मेकअप कराना है, चलो जी ये 500 क्रोन दे के कर करा के आ गई। दूल्हा वो कज़न की तो हो गई शादी, उसको तो ले गया उसका दूल्हा, उसने 1,00,000 लगाया 1,000 लगाए, वो उसके किसी खाते में पड़ गए ना, ये रात को आएगी तो क्या करेगी, देखेगी ना खुद को शीशे में, बालों को खोलेगी अपने, फिर वो जज्बे उभरेंगे। शायद ये बात आपको किसी ने पहले ना कही हो, ऐसे मुझे माफ़ करें अगर मैंने बहुत ही ओपन बात कर दी हो। अगर आप अपनी बच्चियों के अंदर से ये जज्बे कंट्रोल चाहते हैं, या तो कर दें शादी और या कर दें उनको सादगी में। हर नया जोड़ा पेटी में जाता था, सच है, कोई अच्छा जोड़ा माएँ पहनने ही नहीं देती थी, यकीन करें हमें लगता था हमारी अम्मी से बड़ा हमारा कोई दुश्मन ही नहीं हमारी खुशियों का, क्या? और लड़कियों को सोच क्या दी जाती थी, छोड़ी, और अक्लमंद थी माएँ, पता क्या कहती थी, कहती थी अभी बनाओगी तो फिर तुमने थोड़े दिन में तो चले जाना है, तो छोटी बहन को मिल जाएंगे, वहाँ जाके पहनोगी तो तुम्हारे अपने होंगे, होता था कि नहीं, ऐसे ही होता था ना, कमोबेश होता था, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन अब आप देखिए फिटिंग वाले कपड़े, और आप स्पेशली जब हम पाकिस्तानी कपड़े भी पहनाते हैं बच्चियों को शादियों पे, या आप समझिए कि ईद पे या 14 अगस्त के जश्न में और मेले में, तो क्या वो जज्बात को बाढ़ने वाले नहीं होते? मेरी इस बात को सामने रखते हुए आज जाके आप सब अपनी और अपने बच्चियों की कैबिनेट्स को देखें, एक जोड़ा उठाएं, फिर पूछें कि ये जोड़ा पहनकर क्या बर्तन धोने को दिल चाहता है, क्या इस जोड़े को पहन के आजी आती है अंदर, क्या इस जोड़े को पहन के ठलाने को दिल जाता है? हमारे खुलिए कपड़े ही उस तरह के बन गए कि जो हमारे अंदर इस किस्म के जज्बे लाते हैं कि जो हम टैकल नहीं कर पाते, फिर नतीजा क्या कि चलो भई ये सब है तो फिर घर का करो, वो नहीं करना, भी उसमें भी बहुत सारे हमारे मसले बहुत हैं, अभी तो हमें अपनी बिरादरी का लड़का चाहिए, अपने मुल्क का चाहिए, फिर हम ये जुल्म करते हैं बच्चियों पे भी और बच्चों पे भी करते हैं। इसी तरह आप देखिए कि जो यंग लड़के होते हैं ना, लड़के, अब उस पर आ जाते हैं, लड़के तो मैं कहते चलो लड़कियाँ तो कुछ मेहनत कर लें तो कुछ अच्छी लगती भी हैं, लड़के तो फिर वैसे ही लगते हैं, कोई बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ता, वो बाल टेढ़े कर लें, चीर लंबा कर लें, सर पे बाल की कलगी निकाल लें, पैंट पहन लें, कोट पहन लें, जीन पहन लें, सच्ची शायद मैंने नज़र भर के देखा नहीं कभी, मुझे तो लगता है कोई एक ही जैसे लगते हैं, झूठ, आपको मुर्दा मान गया आप सब, मैं आपके मियाओं की बात नहीं कर रही, आपको तो वैसे ही अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते हैं, और आप देखें कि आप कहते हैं कि मैंने अच्छे कपड़े पहने तो मेरे मियाँ ने तारीफ़ की, मेरे मियाँ ने तो कभी नहीं की मेरी तारीफ़, कि कपड़ों की वजह से तारीफ़ करें, क्योंकि वो तो कपड़ों की तारीफ़ हुई। आप सोचिए ना कि हमारा आर्टिफिशियल स्टाइल हर चीज़ में चला गया, हमारे अपने जो हमारे हस्बैंड वाइफ रिलेशन है उसमें भी बड़ी कमी बेशी है, कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं पीछे डिस्कस मैरिड लाइफ A to Z में, लेकिन अब देखिए कि लड़के हैं, अब उनको क्या करें, अब लड़का है, आप लगाइए ना कि अब बाहर के जो दौर हैं 14-15 साल के लड़के को जवानी आ गई, शादी तो हो नहीं सकती, वो तो 18 वाली की भी नहीं अभी होनी, लड़की की नहीं होती तो आपकी कहानी है, अब क्या करें? लड़के को आप पॉजिटिव एथलीट्स में डालें, स्विमिंग, घुड़दौड़, फिर इसी तरह से आप देखिए कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग किस्म की एक्सरसाइजेस का भी करें, जैसे जिसको यहाँ ट्रेनिंग बोलते हैं, एक्सरसाइज मोस्टली लोग समझेंगे मेरी बात को, यानी बच्चों को एक्सरसाइज का भी करें, यंग लड़कों को, कि वो अपनी जज्बात जो है ना वो उसमें निकालें, پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ ینگسٹرز کے قریب سے گزرے تو آپ نے کہا، یا معاشر و شباب، اے جوانوں کے گروہ، کیا کرو؟ روزے کثرت سے رکھا کرو، کیونکہ یہ روزے رکھنا تمہارے جذبات کو قابو میں کرے گا. جو شادی کر سکے وہ شادی کر لے، جو نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھ لے، اس سے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی اس کے اندر جو کام فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، کہ نگاہوں کو جھکانا. یغدو من ابصارہم، میں اس پہ بھی بات ضرور کروں گی. ہمارے پاس یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ہماری ساری کوششوں کو ضائع کر رہا ہے. قرآن پڑھ جائیں ہم، پیرنٹنگ کورسز کر کرا لے جائیں، مسئلے بگڑتے ہی سے جا رہے ہیں دن بدن. کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہم سب کو پتہ ہے کیا کیوں ہو رہا ہے، باہر کا اثر ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ایک انسان اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہے، آج آپ بتائیے، قرآن پہ سب کا یقین ہے نا، الحمدللہ سب کو پتہ نا کہ قرآن قابل عمل ہے اور بہترین ہے، اور ہر دور میں ہر حساب سے یہ بہت اچھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے، اے لوگوں، میں اردو میں پڑھتی ہوں تاکہ جلدی سے اس کو ہم سمجھ کے آگے چلے، کہ اے لڑکو یا مردو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، یغدو من ابصارہم، اور دوسرا کام کیا کر لو، ویخفضوا فروجکم، آنکھوں کو جھکاؤ اور اپنی شرم گاہوں کو پاک کر لو. ایسا لگ رہا ہے یہ مین گیٹ ہے، یہ پھاٹک بند ہوا تو دوسرا بھی بند. یہ 100 فتنوں میں سے بچانے والا ایک حل ہے. میں واقعہ سنا چکی، آپ چاہیں تو سورہ نور کی اس بیل الجنہ کے لنک پہ جا کے ان آیتوں کی تفسیر سن لیں، جس کو سیٹ کی بھی ملتی ہے سنیں، بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے. اس میں میں نے ایک واقعہ بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ ایک موقع پہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی اور دشمن جو تھا وہ پریشان تھا. تو خیر دشمنوں نے جو چال چلی پروسیس، تو وائفیں جو ہوتی ہیں ان کو راستوں میں کھڑا کر دیا، کہ رومن عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، کہا ان کو یرغمال کرو، ان کو اپنے ساتھ لبھاؤ تاکہ یہ جنگ میں لڑنے کے لیے نہ جائیں. یہ خبر امیر لشکر تک پہنچ چکی تھی. اس نے آنے سے پہلے کہا، بچوں آؤ ذرا قرآن تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، جا رہے ہیں اللہ کے دین کا دفاع کرنے، اور یہ آیت ایسی پڑھا دی، یغدو من ابصارہم ویخفضوا فروجکم، ختم ہو گئی بات، چلے گئے، جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے. انہوں نے عورتیں کھڑی کی ہوئی تھیں، سپاہیوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، مسلمان جیت گئے. جب جنگ ختم ہوئی تو وہ طوائفوں کا جو گروہ تھا وہ امیر کے پاس آیا، کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ یہ تم نے ان کی کیسے تربیت کی ہے؟ کہا کیا کیے؟ کہا آج تک ہمارے حسن سے کوئی نہیں پیچھے ہٹا، ہم تو اتنے، ہمارا ظلم حسن نہیں دل پھینکا، لیکن انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. کہا کچھ نہیں کیا، بس قرآن کی ایک آیت پڑھائی تھی، اس پہ عمل کر لیا ہوگا. کہا اچھا، اتنا پیارا تمہارا دین ہے کہ ایک آیت کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا فتنہ دب گیا؟ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. اپنے لڑکوں کو نظریں جھکانے کی دعوت ہے، لڑکیوں کو. باہر کی نظریں کب جھکیں گی؟ جب بے جان ڈبوں کے سامنے ہماری نظریں گھنٹوں کے حساب سے. مجھے بتائیے کہ آپ سنتے ہیں خبریں، سنتے ہیں کہ دیکھتے ہیں؟ اور ینگسٹرز خبریں نہیں سنتے، وہ ٹی وی میں خبریں نہیں سن رہے ہوتے، اور جو بوڑھے بھی خبریں سن رہے ہیں. ابا جی کہتے ہیں ٹی وی اس لیے رکھا ہے کہ خبریں سننی ہیں، تو آج جا کے پوچھے، ابا جی خبریں سننی ہیں کہ دیکھنی ہیں؟ سننی ہے تو ہم آپ کو ریڈیو لگا دیتے ہیں، ہم آپ کو کمپیوٹر کھول دیتے ہیں. یہ جو پتلی کی طرح بن کے اور ادائیں دکھانے والے لوگ جو دلوں کو لجھاتے ہیں، یہ ان کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اس کلچر نے آج ہمارے بچوں کی جوانیوں کو داغدار کیا ہوا ہے. فلم دیکھی جا سکتی ہے نظریں بند کر کے، اور ہیرو ہے اس کو کیا بھائی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں؟ یہ لڑکیاں بھی ہماری دیکھیں گی. کرکٹرز، اداکار، گلوکار، ان کے پوسٹرز، ان کی کہانیاں، یہ ظلم کرے ہم ان پہ، ہم ان کو روکیں گے تو ان کو برا لگے گا، لیکن ہم ان کو دیکھنے کی اجازت دے کر ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اس سے ان کے جذبات بھڑکیں گے. تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہے میرے سامنے، آپ کو تھوڑا سا گو تھرو کراتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم ان ساری چیزوں کو کیا کریں، با کیا ہے؟ تو یہ ایک ہینڈ آؤٹ ہے، یعنی ینگسٹرز کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے دنیا میں، موٹی موٹی باتیں بتاؤں گی، اور یہ بالکل فگرز ہیں، ریئلٹیز ہیں، انہیں کے اداروں کے فگرز ہیں، اور سب پیچھے لکھے ہوئے، میں اس میں سے کچھ چیزیں صرف بتاؤں گی. پوری یعنی انہوں نے دنیا کے کیے، سیکس اینڈ پریگنینسی، یعنی سیکس اور پریگنینسی کے موضوع پر اس وقت دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کچھ میں پڑھنے میں غلطی کھاؤں تو اس کو میری کمی سمجھیں. 1/4 of 15-year-old females and less than 30% of 15-year-old males have had sex. 15 saal ki umar ki ladkiyan 1/4, 15 total logon ke 4 hisse kare na तो वन क्वार्टर जो 15 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले सेक्स कर चुके होते हैं, और लड़के 15 साल की उम्र में पहुंचने तक 30% लड़के सेक्स कर चुके होते हैं, कंपेयर्ड विथ 18 साल की उम्र के जब लड़के होते हैं तो वो 68% लड़के ये काम कर चुके होते हैं, और 60% ऑफ लड़कियां, यानी 18 साल की उम्र में ये काम कर चुके होते हैं। और इनकी पूरा उन्होंने लिखा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको सिर्फ किसिंग और हगिंग ना समझें, यानी असल अमल जिसको आप इस दवाजी ताल्लुक कह सकते हैं। और ये स्टैटिस्टिक रिपोर्ट नीचे हवाला लिखा हुआ है कि ये किन की है, कहाँ की छपी हुई है। दूसरा फिगर है टीनेज प्रेगनेंसीज पे, कि जवानी में कौन सी बच्चियाँ प्रेगनेंट हो रही हैं, ये भी नियरली 1 मिलियन यंग वुमेन अंडर एज 20 बिकम प्रेगनेंट ईच ईयर। 1 मिलियन छोटी लड़कियां 20 साल की उम्र में पहुंचने तक प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दैट मीन्स क्लोज टू 2800 टीन्स गेट प्रेग्नेंट ईच डे। इसका मतलब यह कि एक दिन में 2800 लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। फैक्ट्स एंड ब्रीफ टीन सेक्स एंड प्रेगनेंसी, ये उस रिपोर्ट के अंदर है। फिर एक जस्टिस डिपार्टमेंट है, 1 in 2 यानी 2 में से 1 रेप विक्टिम इज अंडर एज 18। हर 2 में से 1 रेप समझते हैं ज़बरदस्ती जो जिना दुनिया में बाहर किया जा रहा है, वो हर 2 में से 1 जो किया जा रहा है वो 18 साल की उम्र के लड़के या लड़की के साथ किया जा रहा है। 1 in 6 इज अंडर एज 12। 6 रेप के केसेस होते हैं जब जिना बिल जबर जिसको उर्दू में कहते हैं, तो 6 में से 1 जो है वो 12 साल के छोटे लड़के या लड़की से किया जा रहा है, इसकी भी रिपोर्ट आगे मौजूद है। While 9 out of 10 रेप विक्टम्स आर वुमेन, यानी 10 रेप होते हैं तो उसमें 9 रेप औरतों के साथ होते हैं। मैन एंड बॉयज आर ऑल्सो विक्टम बाय द क्राइम। 1995 की एक रिपोर्ट है, 32,130 मर्द जिनकी उम्र 12 साल थी एंड ओल्डर वर विक्टम ऑफ रेप, इनको 1995 में रेप का शिकार किया गया और कोशिश की गई उनके साथ सेक्शुअली मिसहैप करने की, ये रिपोर्टें। फिर उसके बाद सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अमंग टीन्स, ये भी एक समझ लें कि अब ये सेक्स की वजह से टीन एजर्स में जो बीमारियां फैल रही हैं उसका क्या हाल है और क्या हालात हैं। टीन एजर्स एंड यंग एडल्ट्स वर मोर लाइकली टू बिकम विक्टम ऑफ वायलेंट क्राइम देन ओल्डर प्रिजन, यानी इसका खुलासा ये कि जितने भी ये जिना के मामले हो रहे हैं ना, पहले होते थे बड़े लोगों में, 25-30 साल के मर्द औरतें जहाँ भी आप सुनेंगे, आज के दौर में ये 12 से 18 के बीच में आ गए हैं। ये कहाँ से जज्बे आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, यकीन करें यहाँ किसी एक की रिपोर्ट मुझे पता चली कि 18 साल का लड़का है और वो एक अपने दूसरे किसी रिश्तेदार को जिसकी उम्र 26 साल है और अभी उस 26 साल वाले की शादी नहीं हुई, कह रहा है कि आई एम सिक ऑफ सेक्स नाउ। मतलब क्या कि मैं 18 साल की उम्र में अब इतना को ये सेक्स का मामला कर चुका हूँ, मैं थक गया हूँ इसे। और उसके उस दोस्त ने कहा कि अल्लाह के बंदे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो तू तो 18 साल की उम्र में थक गए, क्या बीमारियां नहीं आएंगी, गंदगियां नहीं आएंगी, एड्स नहीं आएगी। आप बताइए कि जब ये बाहर सब कुछ हो रहा है, बाकी चीज़ें आप चाहें तो इसमें पढ़ लें। ये तो हैं वो फिगर्स जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो बेचारी सांस ले रही हैं। आप देखिए कि अगर यहाँ खुदा न खास्ता गंदगी होगी ना, तो उसका असर, उसके जर्म्स हम सब के नाक में जाएंगे। हम कैसे कह सकते हैं कि हम आंखें बंद किए रहें और हमारे ये बच्चे बच्चियां जो हैं ये बेचारे महफूज हो जाएं। कितने स्ट्रॉन्ग ईमान की इनके ज़रूरत है, कितना ज़रूरी है कि हम इनसे इन मौजूआत के ऊपर बात करें, इनके दिलों में अल्लाह का खौफ हो, हम इनको देखें कि आपको अल्लाह ने किस चीज़ के लिए पैदा किया। एक तो है सेक्स का मौजू, एक है होमोसेक्सुअलिटी का मौजू। पहले सेक्स बहुत बड़ा लफ्ज़ लगता था, अब बच्चों को भी ये आम लफ्ज़ लगता है। आज के दौर का जो फैशनेबल लफ्ज़ है ना, वो होमोसेक्सुअलिटी है। फिर उसके बाद इस पे लेंगे, क्योंकि स्पेशली आज के दौर में आपको पता है कि जो चीज़ नई नई चलती है ना, उसका रिवाज पड़ जाता है। तो कुछ टिप्स हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ इस मौजू पे बात करें कि आपने बाहर के प्रेशर में आकर जब कोई इस किस्म की बातें सुननी है तो फिर आप किस तरह से डील करें, कैसे करें। पहली बात ये याद रखिए कि आपसे बात करने और आपसे बात सुनने से पहले बच्चा ये बातें सुन चुका होगा। 3 से 4 साल का बच्चा इस वक्त बाहर की दुनिया से, यानी बाने हैं या स्कूल या फ्रेंड्स या जो भी वो चीज़ें देखते हैं, उसके थ्रू इस लव से आशना है। यानी डोंट हेजिटेट, आप ये मत सोचिएगा कि आपके बच्चे के लिए ये लफ्ज़ नया है या आपको उसको बताना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? हमें तो नहीं पता थी ये बातें। हमारे दौर में तो आज भी ऐसी गवाहियाँ हैं कि शादी तक भी नहीं पता था कि शादी क्या होती है। नए कपड़े, अच्छे कपड़े, जेवर, जूतियाँ, इसीलिए तो लड़कियाँ खुश होती थी। अगर उनको पता चलता कि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ पड़ जानी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी खुशी खुशी कपड़े बनाती। लेकिन आज कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इनसे बात करें। पहली बात देखिए कि क्लियरली आउटलाइन व्हाट इज़ होमोसेक्सुअल बिहेवियर। आपके बच्चे को ये बातें बाहर से जिस तरह भी मिलती हैं, जो होती हैं, लेकिन आपका अमल क्या है कि आप अपने बच्चे को होमोसेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में क्लियरली आउटलाइन दें। मैं आपको इसको इस तरह से समझाना चाहूँगी, क्योंकि ये बातें बहुत पर्सनल सी होती हैं ना, तो बार दफ़ा माएँ फील करती हैं कि हम ये मौजू अपने बच्चों से कैसे शेयर करें। तो मैं आपको इसको बिल्कुल बच्चे पे लेके चल के बताती हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म पे कुछ इस तरह के काम रखे हैं ना, कि हम खाना खाते हैं तो मुँह में डालते हैं, हाँ, कोई दवा आँखों में डालनी हो तो आँखों में डालते हैं, कान में डालनी हो तो कान में। हर बॉडी ऑर्गन का एक मकसद है। आज अपने बच्चों से या जब करेंगे ना, तो उनकी बॉडी पे आप कैसे बात करें कि बेटा, अल्लाह सुब्हान तआला हैड मेड एवरी ऑर्गन फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। मुंह में खाना, कान में दवाई, कानों से सुनते हैं, आंखों में ड्रॉप। कभी आपने किसी को देखा कि मुंह में खाना डालने की बजाय कान में डाल रहा है? और अगर इफ़ यू विल सी इट, व्हाट यू विल टेल, क्या सोचेंगे आप? बस ये है वो पॉइंट। आप अपने बच्चों को अगर सिर्फ एक नुक्ता समझा दें कि अल्लाह ताला ने हर ऑर्गन को एक ख़ास काम के लिए रखा है, तो बस उस काम के लिए उसको इस्तेमाल करना है, तो मेरा ख्याल है ये होमोसेक्सुअलिटी का सारा लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप इनको कैसे समझाएं? अब ये शर्म वाली बातें हैं ना। पहली बात ये कि ये बात जहन में रखिए कि ये इन बातों पर शर्म नहीं करनी चाहिए माओ को। जब आपके बच्चे 12-14 इस एज में आ गए ना, दोस्ती करें। लड़कियों को पीरियड्स आने से पहले माएँ अच्छे तरीके से समझा दें। माँ नहीं बताती ना, तो वो कभी फिर खाला से पूछती हैं, फिर खाला नहीं है तो पुप्पी, पुप्पी नहीं तो दोस्त हैं, फिर वो हर एक अपने अपने टोटके देता है। आप अपनी बेटी को क्यों डिस्क्लोज करते हैं? क्या ये बुरी बात है? आपको शर्म आती है तो आपकी शर्म कम करने के लिए मैं बताती हूँ कि देखिए, बच्चों को इस तरह बताएँगे, बेटा जिसम से पेशाब निकलता है ना, पखाना भी आता है ना, अल्लाह ने जिसम में दो सुराख रखे हैं। गंदगी, आप साइंटिफिकली बच्चों को पता है कि पानी पीते हैं तो पेशाब आता है, खाते हैं तो उसकी वेस्ट निकलती। इसी तरह आप इस चीज़ को डिस्कस कर लें। पीरियड्स को डिस्कस करना क्यों मुश्किल लगता? हमने इसको जो हा हू हवा बना दिया ना, इसने इसको ग्लैमराइज कर दिया। सच बताएं, क्या पीरियड्स की बात आपस में करना कोई ग्लैमर है? क्या दो यंग बच्चियाँ आपस में ये बात करके कोई अच्छे अखलाक का सबूत देती हैं? नेवर। बच्चों को शुरू से बताएं, बेटा आपने कभी बताया किसी को कि मुझे वो पेशाब आया? मैं बाथरूम में गई थी तो मैंने स्टोल पास किया था, तो अगर आपकी बॉडी से ब्लड निकलेगा तो आप ये बात किसी को बताएंगी? ना 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 बच्चे, ये बात नहीं किसी से करते। डी ग्लैमराइज करें इस सारे कॉन्सेप्ट को। फिर इसके अंदर आप देखेंगे कि जब बच्चों को थोड़ी सी समझ आती है, बच्चियों को, और यकीन करें जब शादी उनकी 14-15 साल में करनी है तो मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग भी तो करना है ना, तो जैसे तरबियत में उनको साथ खाने में, पकाने में, कामों में मददगार बनाएं, इस तरह जहनी तौर पे भी इनको तैयार करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ास मकसद के लिए दुनिया में ये सब कुछ दिया है। तो अब होमोसेक्सुअलिटी पे अगर हम बात साथ कर लेते हैं, तो आप देखिए कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो तो अननेचुरल है, उसमें तो वो मकसद ही नहीं पूरा हो रहा। अल्लाह ताला ने अगर सेक्स ऑर्गन हमें दिए हैं तो उसका मकसद क्या है? फर्टिलाइजेशन, बच्चा पैदा हो, ये एक मकसद है। जैसे आप खाना खाएं तो वो मैदे की जगह लंग्स में चला जाए तो क्या होगा? नहीं समझ आती ना, फायदा नहीं होगा। इसी तरह से बच्चों को लॉजिक, छोटी छोटी बातें, बगैर इमोशनल हुए, बगैर की शर्माते गुजराते कोल्ड फैक्ट्स रखे। बच्चियों को भी ना उस वक्त लगे कि ये कैसी हो रही है बात। और बात सफा आप देखिए कि यहाँ तो आपको होता है कि लड़कों को भी ये बातें बताई जाती हैं, तो अगर आपको पता है ना कि लड़कों को ये बातें पता चल गई हुई आपके, तो उनको भी डीग्लैमराइज करें इसका सस्पेंस। बाज़ लड़के फिर अपनी बहनों से पूछते हैं, अच्छा कैसे होता है, क्या होता है, और बाज़ बेतकल्फ़ी में ये बातें भी लोग करते रहते हैं। तो इसका हवा ख़त्म कर दें उनके जहन से, सिंपल बता दीजिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? टेल देम व्हाट इस्लाम सेज अबाउट होमोसेक्सुअलिटी विद विजडम। हाँ, ये है असल उनका वो भूत उतारने वाला काम, कि कुरान पाक में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में जो कुछ बताया है ना, आप उनको आयतों के रेफरेंस से बताएं। 7 नंबर जो ये सूरत है और 80 से 84 आयते हैं, फिर 11 सूरत का ये हवाले सारे आप अगर बाद में नोट कर लें, इनको खोलें। कौम लूत के किस्से हैं, लूती फेल था जो बिल्कुल फितरत के खिलाफ था, तो आप उनको वो स्टोरी सुनाएं, वो सजाएं सुनाएं। आप बुक लें लाइब्रेरी से प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ की, कौम लूत का किस्सा पहले ख़ुद पढ़ें फिर उसके सीक्वेंसेस। आपको पता है कि बाकी कौमों पे तो एक अजाब आया था ना, इस कौम पे 3 अजाब आए थे। इनकी बस्तियां पटख के उल्टी मारी गई थी कि इनके सर नीचे और ऊपर। बहरे मुर्दार आज जहाँ है रेड सी ओशन, उसके अंदर सदूम नाम की जो बस्तियाँ थी वो डुबोई गई। आज भी कहते हैं कि वहाँ कोई जानवर नहीं बचता, उस पानी में कोई मछली नहीं है, इतना गर्म पानी है कि कच्चा अंडा रखें तो वो उबल जाता है। बच्चों को ये दिखाएं, ऐसी बातें बताएं कि कुरान ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है। फिर इसके बाद एक तीसरी टिप है, और वो क्या है कि गेट देम टू राइट अ पेपर टू और डू एन असाइनमेंट अबाउट इट। ये बहुत अहम है, मेरी नज़र में मुझे सारी टिप्स में से सबसे यही पसंद आई थी कि आप अपने बच्चों को ये प्रोजेक्ट दे दें। आप जितना भी कहेंगी ना, वो आपसे सवाल ही करते रहेंगे, और आप अभी खुद समझती हैं कि मैं इस मौजू पर बात नहीं कर सकती या मैं बच्चे के सवालों का जवाब नहीं दे सकूंगी। तो फिर आप क्या करें, बच्चों को एक काम दे दें कि ओके गो हैड डू रिसर्च और इसके बारे में एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट से असाइनमेंट बनाओ। अब वो क्या करेंगे भला, स्पीचेस सुनेंगे ना किसी स्पीकर के, अगर उनको इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश में सुनेंगे, नॉर्वेजियन है तो नॉर्वेजियन में, लेकिन उनको आप चूज़ करके दें किन की सुननी है, इस तरह कुरान की आयतें दें। अब उस असाइनमेंट की तैयारी में वो टॉपिक्स ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करते करते तो जो बातें आपने उनको कहनी थी वो खुद कई स्पीकर्स की ज़बान से आपसे बहुत अच्छी तरह सुन चुके होंगे, बल्कि वो फिर आपको भी नॉलेज देने वाले होंगे। आप उन्हें कहे ओके लेट वी विल टॉक अबाउट दिस, फर्स्ट वी विल मेक दिस असाइनमेंट। तुम 15 दिन ले लो, तुम ये असाइनमेंट बनाओ, फिर 16वें दिन हम बैठेंगे। तो आप देखिएगा आप कम बोलेंगी वो ज़्यादा बोलेंगे, तो उनका माइंड जो है ना खुल जाएगा, और हो सकता है इसी बहाने उनको शौक पड़ जाए और वो कुरान पाक को भी इंशाल्लाह ले सके। आगे चलिए चौथी टिप है, मेक इट क्लियर पीपल आर नॉट बोर्न दैट वे। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं ना होमोसेक्सुअल को गेज कहते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, मुझे खुद नहीं पता था 2-3 साल पहले तक। तो बहरहाल अब वो कहते हैं कि हम इसी वे पे पैदा हुए हैं। आप इनको बताइए कि हम ऐसे नहीं पैदा हुए, कभी दो मर्दों के ताल्लुक से या दो औरतों के ताल्लुक से कोई इंसान नहीं पैदा हुआ, तो ये तो फितरत का रास्ता बंद करने वाला मामला है, बल्कि ये अल्लाह ताला पर एक इल्ज़ाम लगता है। इसलिए इस तरह से अगर मिसाल है कि लोग इस काम के लिए पैदा हुए, तो फिर अल्लाह ने कौम लूत पे अज़ाब क्यों भेजा, ये भी एक जवाब दिया जा सकता है। फिर अल्लाह इसको मना क्यों करता है, इसके ऊपर इतनी सख्त सज़ा क्यों है। पांचवी टिप देखिएगा, मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिज़ायर एंड एक्शन। ये बहुत अहम है, क्या कि फ़र्क पैदा करिए एक डिज़ायर में और एक्शन में। एक होती ख्वाहिश और एक होती उस काम को कर लेना। सम टाइम कुछ लोगों के दिलों में इस किस्म की ख्वाहिश आ सकती है, माहौल का असर बता तो रहे हैं कि वही सब कुछ। आप देखिए, एक बुरा ना लगे किसी को, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि एक तो है ना वो है जो ओपन फिर रहे हैं दुनिया में, मादर पिदर आज़ाद डिसबिलीवर, वो तो उनको तो शर्म ही नहीं, वो तो परेशान हो जाते हैं अगर 3-4, 7-8 साल के बाद उनका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो। लेकिन ये जो हम हैं ना बीच के, ना इधर के ना उधर, इनका मसला फिर क्या हो जाता है, फिर उधर वो सेक्स नहीं होती, लेकिन दो लड़कियां साथ रहती हैं हॉस्टल्स में, आप घर में इकट्ठे रहते हैं। अल्लाह के नबी ने क्लियर कट कहा कि 10 साल का होने पर बिस्तर अलग कर दो। आज भी हमारे कल्चर में आम है कि एक ही रजाई में 2-3 लोग सो रहे होते हैं। शादियों पर देखें, दावतों में देखिए, आपकी बच्चियां अगर किसी के साथ, तो 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं सो सकती, तीसरा शैतान होगा, साली सहुमत शैतान। ये कट डाउन कीजिए, कहीं बच्चे जाए रहें ये शर्त है तुम्हारा अपना बिस्तर होगा अलग, तुम ज़मीन पे सोगे अलग सोगे, एक बिस्तर में सोना। फिर शैतान इस तरह के ख्याल डालता है, फिर चलो खैर है क्या, और यकीन करें इसके ऊपर तो इतना गंद है। हमारे मुस्लिम यानी सिर्फ 2-3 चीज़ें सैंपल की मुझे किसी ने भेजी थी कि मैं देख नहीं सकी, हमारे अपने मुल्क के हॉस्टल्स के अंदर लड़कियों के क्या मामलात हैं, और वो मामला जब स्क्रीन पे आते हैं, लोगों ने स्क्रीन पे उसको डाला है, वीडियोस बनाई हैं, तो ऐसे तो नहीं बन जाती ना। फिर उसका अगला मरहला तो वही बात है कि नज़र रखने की ज़रूरत है, हमें सबको भी अपने ऊपर, अपने जज्बात को भी लेना है। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगर तो सच्चा ईमान है ना, तो एक मुसलमान कभी ये ख्याल दिल में ला ही नहीं सकेगा कि मैं इस तरह का काम कर सकूँ। फिर उसके बाद छठी टिप क्या है कि एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस इन कीपिंग दीज डिज़ायर्स अवे। ये है वो नकेल اسلامک نالج، اللہ کا خوف، دین کا علم بچوں کو دیں گے، دلائیں گے، تو ایسی کو اگر گندی خواہش آئے گی بھی تو اس کو پھر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کو ڈی گلامرائز کریں، اس کا حسن نکالیں. یہ کوئی بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ فطرت کا اصول ہے اپوزٹ چیزوں میں اٹریکشن ہوتی ہے. پازیٹیو اور نگیٹو پول اگر آپ نکال ساتھ کریں گے نا میگنیٹ کے، تو وہ جڑ جائیں گے. پازیٹیو کو پازیٹیو کے ساتھ لائیں گے نا تو وہ ریپیل کریں گے. یہ تو فطرت سے انحراف ہے کہ لڑکی لڑکی میں کشش اور لڑکا لڑکے میں، یہ ایسے پازیٹیو پازیٹیو مل رہے ہیں، اور اس میں کتنی فرکشن، اور اس کے بعد کتنے نقصانات پڑتے ہیں کہ جو لوگ اس کام میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر شادیوں کے قابل نہیں رہتے، شادیاں کی بھی توڑ دیتے ہیں. ایسے فگرز موجود ہیں کہ شادی شدہ مرد جب ایسی چیزوں میں پڑا تو اس کو اپنی بیوی سے محبت ہی نہیں ہے، اس کو پسند نہیں، کہتا مجھے تمہارا فگر نہیں پسند، مجھے تم ایسی نہیں اچھی لگتی، اور خود اپنے جسم کے اوپر وہ شیو بھی کرتا ہے اور لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو بنا سجا کے پیش کرتا ہے. پول کھل جاتے ہیں مرد میں. ان ایسے لڑکوں کی تو خاص پہچانیں ہیں، دو تین فوراً ایک منٹ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ مرد ایسی گندگی میں پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو اسے محفوظ رکھے. اور آخری چیز جو اس پریزنٹیشن میں کہ ایمفیسائز دی امپورٹینس آف اینڈ مینٹین اسلامک رولز اینڈ موڈیسٹی وین ایون ود دا سیم سیکس، وہی بات کہ ان کو موڈیسٹی حیا کے نام معاملے پہ اس کی اہمیت سمجھائیے. ایون اگر عورتوں میں بھی عورتیں ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات ہے، عورتیں ایک دوسرے کے آگے سامنے کپڑے نہ بدلیں، اپنے ڈریس کوڈ کے بارے میں کیئرفل رہیں. آج یہ بھی ایک بڑا نیا ایشو اٹھ گیا، اچھا جی پردہ تو باہر مردوں میں، عورتوں میں تو ہم پھر سلیو لیس بھی پہن سکتے ہیں، عورتوں میں تو ہم لو نیک بھی پہن لیں. ہر وہ چیز آپ کے جذبات کو جو بھرتی ہے آپ کو اس سے رکنا ہے، روکنا ہے. اور یہ جو کپڑے، جس طرح کی ڈریسنگ ہے، جو ٹائٹس، اور ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے جسم میں اس طرح کی یعنی چیزیں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی چیزیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس سے بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے.